और अपने ही ऊष्मा मैं समस्त जीवों का जीवन तथा तपस्या का तरफ हूँ।
अब इसको समझें कि भगवान जो है उसी प्रकार से ये सब जो है उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से मणियों में सूत्र पिरोया गया है या सूत्र में मणि पिरोए गए हैं उसी प्रकार से कृष्ण में सब कुछ पिरोया गया है। उसमें अभी तक भगवान ने कितने उदाहरण दिए, पहला उदाहरण दिया किस चीज का, जल में स्वाद, जल में रस है ना, जल में रस अगर ना हो तो जल नहीं रहेगा है ना। फिर सूर्य चंद्रमा में प्रकाश अगर ना हो तो सूर्य चंद्रमा का कोई मतलब नहीं है, है ना। फिर समस्त वेदों में ओम ओम ना हो तो समस्त वेदों का कुछ अर्थ नहीं निकलता। ये सब जो है उदाहरण भगवान ने जो दिए हैं वही है कि धागा के कारण ही ये फूल आपके सामने है, नहीं तो इसका पता नहीं चलेगा है ना। तो ये सब चीजें प्रणमा सर, अच्छा हाँ क्षमा करना, पिछले श्लोक में प्रणमा सर्व वेदेशु के बाद शब्दाखे ये भी था ना, क्षमा करना, सातवें आठवें आठवें श्लोक को हमने जो है अभी पूरी चर्चा नहीं की। तो समस्त वेदों में प्रणव के बाद भगवान ने क्या बताया है, शब्दाखे आकाश में शब्द, आकाश में शब्द कृष्ण कहते हैं कि मैं हूं। इसको भी समझिए कि आकाश में अगर शब्द ना हो तो ये आकाश नहीं रहेगा, आकाश नहीं रहेगा है, ये क्या बन जाएगा, महातत्व। आकाश में शब्द ना हो तो महातत्व बन जाएगा है ना, और महातत्व में जो है जब शब्द का गुण आता है तो ये आकाश बनता है। उस सृष्टि का ये क्रम है, है कि जब जो है शब्द का गुण आता है महातत्व में तो आकाश बनता है, और फिर आकाश में जो है स्पर्श का गुण आता है तो वायु बनती है, और जब वायु में रूप का गुण आता है तो अग्नि बनता है, और अग्नि में जब रस का गुण आ जाता है तो जल बन जाता है, जल में जब गंध का गुण आता है तो पृथ्वी बन जाती है। तो शब्दाखे का मतलब ये भी है कि आकाश में शब्द है ना। तो जैसे ही आकाश जो है शब्द का गुण छोड़ देता है तो फिर ये जो है समाप्त हो जाता है, फिर आकाश तत्व तो नहीं रहता। तो शब्दाखे इसके बाद पौरुषम निशु, पौरुषम निशु का मतलब क्या है, मनुष्य में पुरुषार्थ, मनुष्य में पुरुषार्थ। तो मनुष्य लोग जो है अपना पुरुषार्थ दिखाते हैं, उनके अंदर बहुत निर्माण करने की क्षमता है मनुष्यों के अंदर है, और नए नए कार्य करने की क्षमता है, बड़े बड़े कार्य करने की क्षमता है, हैं तो ये सब पौरुष कहलाता है, पुरुषार्थ। ये सब जैसे माइक्रोफोन है, ये सब चीज़ें ये जो वैज्ञानिकों ने बनाई हैं ये क्या है, पुरुषार्थ है ना। तो ये सब जो पुरुषार्थ है ये कहाँ से आया है, भगवान से आया है। और अगर ना हो तो मनुष्य फिर नहीं कहलाएंगे, क्योंकि बाकी पशु पक्षियों में ये सब कहाँ है पुरुषार्थ, पशु पक्षी तो अपना खाना सोना जानते हैं और कुछ नहीं जानते है ना। ये मनुष्य में कितने पुरुषार्थ हैं, कितनी बिल्डिंग है, कितनी कितनी मशीनें हैं, क्या क्या मतलब बनाया है, पशु पक्षी कुछ नहीं जानते हैं सब पर ना। तो पौरुषम निशु का मतलब ये है तुम भगवान, तो अगर अगर ये पुरुषार्थ ना हो तो ये मनुष्य फिर क्या कहलाएंगे, केवल दो पैर के जानवर होंगे और कुछ नहीं, दो पैर के जानवर होंगे। तो ये भगवान से आया पुरुषार्थ है ना, श्रद्धा के पौरुषम निशु। अच्छा आप नवे श्लोक में भगवान कहे पुण्यो गंधा पृथिव्याम चा, कि पवित्र गंध है पृथ्वी में, पवित्र गंध है ना। तो हम तात्पर्य में प्रभुपाद के तात्पर्य इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि इसमें कुछ ज़्यादा गहरी मतलब व्याख्या है, लेकिन अभी हम इसको जो है थोड़ा ऊपर ऊपर से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो भगवान क्या कह रहे हैं, पृथ्वी में पवित्र गंध में हूँ है ना। तो पवित्र गंध क्यों भगवान कह रहे हैं पृथ्वी में, एक कारण तो है कि पृथ्वी में कई जगह दुर्गंध भी होती है, पृथ्वी में कई जगह दुर्गंध भी होती है ना, तो जो दुर्गंध मतलब होती है, कोई चीज़ सड़ती है है ना, तो ये पृथ्वी का गुण नहीं है, ये पृथ्वी का गुण नहीं है। पृथ्वी का जो असली गुण है वो पवित्र गंध है, है? वो पवित्र गंध है, पृथ्वी की जो पवित्र गंध है वो कहाँ से मिलती है, फूलों के द्वारा, जहाँ फूल पैदा होते हैं तो फूलों के द्वारा वो पवित्र गंध। कई पेड़ों में भी सुगंध निकलती है, चंदन में सुगंध निकलती है, लकड़ी में सुगंध निकलती है, और फूलों में और फलों में भी सुगंध निकलती है, तो ये सब जो है सुगंध पवित्र है, ये पवित्र गंध है, तो ये पृथ्वी में है ना। और दूसरा मतलब ये भी गंध का कि मतलब अगर पृथ्वी में गंध ना रहे तो पृथ्वी क्या बन जाएगी, पानी। गंध के कारण ही पृथ्वी पानी जो पृथ्वी बनती है ना। तो ये वही उदाहरण हुआ कि इस फूल के अंदर अगर धागा ना हो तो धागा का पता नहीं चलेगा, गायब हो जाएगा, तो फूल ही गायब हो जाएगा, तो पृथ्वी गायब हो जाएगी, पृथ्वी पानी बन जाएगी अगर गंध ना हो, है ना। तो भगवान कहे पुण्यो गंधा पृथिव्याम चा प्रतेजस चास्मि विभावसो, अग्नि में तेज, अग्नि में तेज या रूप का जो गुण है तो ये अग्नि का ही कारण है, और अग्नि में अगर ये रूप या तेज ना रहे तो क्या बन जाएगा, ये जल, ये अग्नि क्या बन जाएगी, हवा बन जाएगी, अग्नि हवा बन जाएगी। हवा में जब रूप का गुण आता है तो ये हवा ही अग्नि बनती है, है ना। तेजस सास में भाव। इसके बाद जीवनम सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में मैं जीवन हूँ। तो इसमें प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, तात्पर्य नीचे से तीसरी लाइन देखिए, मनुष्य की आयु भी कृष्ण के कारण है, अतः कृष्ण की कृपा से मनुष्य अपने को दीर्घायु या अल्पजीवी बना सकता है, अतः कृष्ण भावनामृत प्रत्येक क्षेत्र में सक्रिय रहता है, है ना। तो जीवन ना? जीवन और मरण है ना, ये कृष्ण के हाथ में है। इस जीवन काल में आप जो है जितने भी उल्टे सीधे काम चाहे तो कर लें, तो ये आपके हाथ में है, लेकिन जीवन और मरण आपके हाथ में नहीं है। जिस समय जीवन कृष्ण जो है आपका लेना चाहेंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, और जिसको जीवन देना चाहते हैं तो जीवन देते हैं, और कृष्ण जो है जब किसी को जीवन देना चाहते हैं मच्छर के शरीर में, तो उसको मच्छर का ही जीवन लेना पड़ता है, फिर उसका कुछ भी कंट्रोल नहीं है, जीवन में किसी का कंट्रोल नहीं है। हाँ, जीवन काल में अपना कंट्रोल बहुत है कि कितने अच्छे काम कर लो और कितने बुरे काम कर लो, खूब अपना जो है मनमानी कर लो, जितना चाहो कर लो, है ना। और कृष्ण की सेवा करना चाहो तो कृष्ण की सेवा भी कर लो, वो खूब आपके पास कंट्रोल है अपना, लेकिन जीवन के ऊपर आपका कोई जरा भी कंट्रोल नहीं है, है? और इस जीवन के बाद आपका कोई भी कंट्रोल नहीं, कौन सा जीवन मिलेगा, तो कृष्ण के हाथ में है। और कृष्ण जो है अगर आपको मनुष्य का जीवन ना दें करोड़ों करोड़ों जन्मों तक, तो आप तो कोई कंट्रोल नहीं है कि क्या आप चाहें कि मिल जाए, नहीं मिलेगा। तो जीवनम सर्वभूतेषु, समस्त प्राणियों में जीवन है ना, जीवनम सर्वभूतेषु, और जीवन का मतलब ये भी है कि समस्त प्राणियों में जीवन कृष्ण ही दे रहे हैं। जैसे धागा, धागे में जो फूल में जैसे धागा है ना, उस कारण से ही ये फूल का जीवन है या मतलब दिखाई पड़ रहा है, एक साथ है। उसी प्रकार समस्त प्राणियों में जीवन कृष्ण ही जो है, कृष्ण ही दे रहे हैं जीवन, नहीं तो कोई श्वास नहीं ले सकता। ये भौतिक शरीर जो है बिल्कुल एक प्रकार से क्या है, एक थैले की तरह है, बिल्कुल बेकार का थैला है जिसमें 9 छिद्र बने हुए हैं, 9 छेद वाला थैला है ना, ये किसी काम का नहीं है, बिल्कुल बेकार है। जीवन जो है जैसे निकल जाए तो ये बस वो पला रहता है लकड़ी की तरह या जिस तरह से भी हो, और बेकार हो जाता है, नष्ट हो जाता है ना। तो जीवन देने वाले कृष्ण हैं, जीवनम सर्वभूतेषु। है ना। इसके बाद तपस्या अस्मि, तपस्या जो तपस्वियों में मैं तपस्या हूँ, है ना। तो तपस्या करने की शक्ति कृष्ण से आती है। कोई व्यक्ति जो है अगर तपस्या करना चाहता है तो तपस्या करने की शक्ति उसको कृष्ण देते हैं। तपस्या अस्मि तपस्वसु, श्लोक संख्या 10 मेरे पीछे बोली। बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातन बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामः हे प्रथा पुत्र, यह जान लो कि मैं ही समस्त जीवों का आदि बीज हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि तथा समस्त तेजस्वी पुरुषों का तेज हूँ। तो तात्पर्य हम पढ़ेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातवीं लाइन तात्पर्य। अतः आदि रूप में कृष्ण समस्त वस्तुओं के उद्गम हैं, वे मूल हैं। जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं, है ना। इसको समझिए, प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि समस्त वस्तुओं के उद्गम है, वे मूल हैं, हैं। तो प्रभुपाद लिख रहे हैं मूल मूल हैं, और भगवान क्या कह रहे हैं, बीज हैं, समस्त प्राणियों के बीज हैं भगवान, है ना। इसको समझना है ना, भगवान कहते हैं समस्त प्राणियों के बीज हैं और प्रभुपाद कहते हैं मूल, है ना। तो मूल क्या, जैसे वृक्ष का मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, तो प्रभुपाद मूल की बात कर रहे हैं। मूल मतलब जड़, जड़ की बात कर रहे हैं। तो जड़ से ही पेड़ का जो है पालन होता है, जड़ से ही जो है वृक्ष है पृथ्वी के रस को खींचता है और पूरे पेड़ में पहुंचाता है, है ना। तो वो जड़ है और प्रभु और भगवान कह रहे हैं बीज। अब इसको समझना पड़ेगा कि इस संसार में ऐसा कोई भी पेड़ नहीं मिलता कि जिसके बीज से पेड़ हो और बीज बना रहे। बीज ही फिर जड़ बन जाता है। बीज तो जो है मतलब परिवर्तित हो जाता है ना, लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं ऐसा बीज हूँ जो सनातन है, यानी बीज बीज ही बना रहे और उससे पेड़ पैदा हो जाए। आप समझ रहे हैं, ऐसा कोई पेड़ होता नहीं, ऐसा कोई बीज होता ही नहीं कि बीज जो है ज्यों का त्यों बना रहे सनातन अपरिवर्तित, परिवर्तित ना हो और उससे पेड़ निकल आए। वो पेड़ जो है निकल आए और फिर फले फूले, अंत में सूख जाए, नष्ट हो जाए, और वो बीज जो ज्यों का त्यों बना रहे उससे फिर से पेड़ निकले, ऐसा तो नहीं होता ना। कोई भी बीज होता है उससे पेड़ बनता है और फिर फला फूला और नष्ट हो गया, अब वो दोबारा उसमें से नहीं निकल सकता है, है ना। तो बीज तो नष्ट हो ही चुका है ना, लेकिन भगवान कैसे बीज हैं आप सोचिए। भगवान एक ऐसे बीज हैं जो कि बदलता नहीं है, नष्ट नहीं होता है, हैं, और उससे पेड़ पैदा होता है, है ना। तो सर्वभूतानां बीजम, जितने भी प्राणी हैं उनका एक बीज सनातन में है, पूरी सृष्टि के बीज भगवान है। तो अब सोचिए कि वो अब जो बीज है, जड़ का काम कर रहा है बीज, बीज ही जड़ का काम कर रहा है, हैं, तो उसको आप जड़ कहते हैं तो जड़ भी कह सकते हैं, लेकिन वास्तव में वो क्या है, बीज है, अपरिवर्तित है, सनातन है, है ना। तो इसलिए प्रभुपाद लिखते हैं कि जिस प्रकार मूल सारे वृक्ष का पालन करता है, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं। तो बीज से जो है उत्पन्न भी होता है पेड़, और वही बीज, अब जड़ तो है ही नहीं, बीज ही जड़ का काम कर रहा है तो पालन भी कर रहा है पूरे पेड़ का, है ना। तो ये जो है मतलब बात समझना है हमको। आगे प्रभुपाद लिखते हैं, उसी प्रकार कृष्ण मूल होने के कारण इस जगत के समस्त प्राणियों का पालन करते हैं, इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में कठोपनिषद 2-2-13 हुई है। नित्यो नित्यानाम चेतनश्चेतनानाम एको बहु नाम यो विदधाति कामान। वे समस्त नित्यों के नित्य हैं, वे समस्त जीवों के परम जीव हैं और वे ही समस्त जीवों का पालन करने वाले हैं। तो यहाँ हमें समझना है, तो ये जो है मतलब वही बात है जो भगवान ने 7वें श्लोक में बतलाई। क्या बतलाई, क्या बतलाई? धागा, धागा, धागा में हर चीज परोई गई है ना। यहाँ पर धागा क्या है? भगवान बीज हैं और समस्त प्राणी जो है उसमें मतलब वो है, जैसे फूल हो धागे में पिरो गए तो समस्त प्राणी जो है ना। और फिर भगवान क्या कहते हैं? बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि, बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूँ। तो बुद्धि के द्वारा जो है बहुत बड़े बड़े काम होते हैं, है ना। तो लोग सोचते हैं कि भाई देखो हाँ ये तो इन्होंने तो भगवान से भी आगे बढ़ गए बुद्धि के द्वारा, तो उनको पता नहीं कि भगवान से ही बुद्धि आई है ना। बुद्धिर बुद्धिमताम अस्मि है ना, तो बुद्धिमानों में बुद्धि अगर ना हो तो बुद्धिमान थोड़ी कहलाएगा। और तेजस तेजस्वी नाम हम, तेजस्वियों का तेज, भगवान कह रहे हैं तेजस्वियों का तेज मैं हूं, है ना। तो तेज का मतलब क्या होता है? तेज का मतलब होता है कुछ प्रभाव, किसी व्यक्ति के अंदर कुछ प्रभाव होता है कि वो अपना प्रभाव डाले जिसके ऊपर वो वैसे ही काम करे, ये तेज कहलाता है। उसके तेज से जो है कोई व्यक्ति उसकी इच्छा के विरुद्ध काम नहीं कर सकता, उसको तेज बोलते हैं, है ना। तो प्रभुपाद में वो तेज था, प्रभुपाद में वो तेज था तो अपने उस तेज के द्वारा वे किसी व्यक्ति को आश्वस्त कर सकते थे कि कृष्ण भावनामृत से उसके जीवन की पूरी सफलता हो जाएगी। उनके अंदर ऐसा तेज था कि वे जो कुछ भी बोलते थे वो व्यक्ति के दिमाग में वो घुस जाता था और प्रभाव डालता था कि हाँ यही ठीक है। और ये तेज रूपा ने कृष्ण से मांगा था कि मैं इन लोगों को नहीं समझा सकता, है ना, लेकिन अगर आप चाहें असंभव को संभव कर सकते हैं और मेरी वाणी इनके हृदय में घुस जाए, अगर आप चाहें तो ऐसा हो सकता है और इनको फिर जीवन का असली जो सुख है ये प्राप्त हो सकता है। तो प्रभुपाद को तेज तो दिया भगवान ने, तो बड़े बड़े वैज्ञानिक भी जो है उनके सामने वो ऐसे हो जाते थे कि आप जो कुछ कह रहे हैं वही ठीक है, है? और प्रभुपाद उनको भी जो है फूल लास्कल बोलते थे तो मानते थे कि हाँ आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि वो तेज था, प्रभुपाद के अंदर ऐसा तेज था, है ना। प्रभुपाद के शिष्य थे जियानंद प्रभु, है ना, तो उनके अंदर भी ऐसा तेज था कि कोई व्यक्ति अगर उनके सामने आए तो वो प्रभावित हो जाता था उनसे, है ना। और वो अगर जो है मतलब उसके ऊपर अपना प्रभाव डालें तो वो कुछ नहीं कर सकता था। तो एक बार ऐसा हुआ था कि जियानंद प्रभु सड़क में जा रहे थे, उनके साथ में कुछ भक्त लोग कीर्तन कर रहे थे, नगर कीर्तन कर रहे थे, विदेश की बात है ना, जियानंद प्रभु सैन फ्रांसिस्को में थे ना, तो सैन फ्रांसिस्को में तो नगर कीर्तन में, तो जब भक्त लोग नगर कीर्तन में मतलब कीर्तन कर रहे थे सड़क में, तो एक बहुत मतलब भारी भरकम आदमी, बड़ा दुष्ट था, उसने आक्रमण कर दिया भक्तों के ऊपर, है ना। तो वहाँ के कुछ लोग ऐसे होते हैं ना जो दिमाग मतलब ख़राब होता है एकदम, पागलपन सवार हो गया, तो भक्त लोग जो है कीर्तन कर रहे हैं उसने आक्रमण कर दिया और अकेला ही जो है इतना भारी भरकम था वो कि सब भक्त लोग डर गए, है ना, इधर उधर हो गए। लेकिन जियानंद प्रभु तो बिल्कुल दुबले पतले थे, उन कोई बहुत मतलब अच्छा मतलब शरीर नहीं था उनका, बिल्कुल दुबले पतले थे, लेकिन जियानंद प्रभु जो है उसके सामने आए और इसको डांट करके बोले चैंट हरे कृष्णा, तो वो जो है एकदम से डर गया और वो चला गया दूसरे रास्ते से। इतना मतलब तो उनमें कोई डर नहीं था, तो उसको कहते तेज, है ना। तो ये जो है मतलब क्या है कि भगवान का था उनके अंदर तेज, तो ये तेजस तेजस्वी नाम हो, तेजस्वियों में तेज है ना, तो भगवान बताते हैं तो तेज के कारण कोई व्यक्ति तेजस्वी बन जाता है, और तेज ना रहे तो फिर क्या होगा, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा है ना, तो वो जो है भगवान बताते हैं। श्लोक संख्या 11। अच्छा कितने करना है, सर्वार्थक करना है, सर्वार्थक सर्वार्थ ठीक है। श्लोक संख्या 11 बोलिए, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मी भरतर सब। मैं बलवानों का कामनाओं तथा इच्छा से रहित बल हूँ, हे भरत श्रेष्ठ अर्जुन, मैं वह काम हूँ जो धर्म के विरुद्ध नहीं है। तब इस इन कुछ और बातें हैं जिनमें भगवान वही उदाहरण दे रहे हैं, क्या कि धागे में जैसे जैसे फूल में धागा है ना, उस तरह से भगवान जो है सूत्र रूप में कैसे समाये हुए हैं हर चीज में। तो अब क्या क्या बता रहे हैं, बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम, बलवानों का मैं वो बल हूँ जो काम और राग से रहित हो है ना। तो प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि बलवान पुरुष की शक्ति का उपयोग दुर्बलों की रक्षा के लिए होना चाहिए, व्यक्तिगत आक्रमण के लिए नहीं। इसी प्रकार धर्म, अच्छा हाँ फिर तो आगे, अभी तो बल की बात है इतना ही है। तो प्रभुपाद ने लिखा है ना, तो मतलब क्या है कि बल भगवान बताते हैं ऐसा हो जो काम और राग से विवर्जित हो। काम जहाँ काम होता है वहाँ क्रोध भी होता है, कामात क्रोध भी जाए थे, तो काम क्रोध का जोड़ा है, जहाँ काम होगा वहाँ क्रोध भी होगा। और राग भगवान कहते हैं बल कैसा हो, काम और राग से विवर्जित हो। राग जहाँ है वहाँ द्वेष भी होगा, राग द्वेष व्यवस्थित हो है ना, राग द्वेष इनका जोड़ा है। तो इसका मतलब है काम क्रोध जिसमें ना हो और राग द्वेष जिसमें ना हो, ऐसा बल है ना। तो ऐसा बल है जिसमें काम क्रोध ना हो, अपनी इंद्रिय तृप्ति की कामना ना हो है ना, राग द्वेष ना हो है ना, तो ऐसा बल। इसका मतलब क्या है, भगवान की सेवा में है जो बल लगाया जाता है, तो वो बल जो है क्या है, वो असली बल है, उस बल से अपनी रक्षा होती है। कोई बलवान व्यक्ति जो है जिसके अंदर ये बल होता है, तो ये बल जो है इसका हमेशा बना रहेगा। लेकिन जहाँ काम क्रोध और राग द्वेष होता है तो वो बल फिर रहता नहीं है, हाँ उसका बल भी नष्ट हो जाता है, वो व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है। जब कोई व्यक्ति अपने बल का प्रयोग जो है काम क्रोध और राग द्वेष के कारण करता है, तो उसका वो बल नष्ट हो जाता है, वो व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है ना। तो जैसे एक उदाहरण है रावण का, रावण का बल है, तो रावण का बल क्या है, अपने काम क्रोध के आधार पर ही उसका अपना वो बल प्रयोग करता है ना, राग द्वेष के आधार पर ही अपना बल प्रयोग करता है ना। तो अंत में उसने क्या हुआ, उसने सीता का भी अपहरण किया अपने बल के द्वारा, और फिर नष्ट हो गया है ना, तो उसका बल भी नष्ट हो जाता है, वो व्यक्ति भी नष्ट हो जाता है। तो उस बल को भगवान नहीं बताते हैं कि मैं हूँ है ना, क्योंकि वो बल, उस बल से वो व्यक्ति जो है रहता नहीं है। लेकिन एक ऐसा भी बल है जिसमें काम और राग ना हो, जैसे हनुमान जी में बल है, है? तो ये बल का प्रयोग करते हैं लेकिन भगवान की सेवा में करते हैं, तो हनुमान जी अभी भी हैं, उनका बल भी घटा नहीं, उनका बल भी घटता नहीं है, और वो भी जो है मतलब जीवित हैं अभी तक। तो वो बल जो है मतलब भगवान कहते हैं कि मैं हूँ, क्योंकि उस बल से वो व्यक्ति जो है मतलब अपनी स्थिति में बना रहता है ना। जैसे कि धागा, धागा हो तो ये जो फूल है ये बना हुआ है अपनी जगह पर, तो वो बल जो है किसी के पास है तो उस बल के द्वारा वो अपनी स्थिति में हमेशा बना रहेगा। तो भगवान कहते हैं काम राग विवर्जितम है ना। एक श्लोक है शास्त्र में कहीं लिखा है, विद्या विवाद आए धनम मद आए शक्ति परेशान परपीड़ नाए खलस साधु विपरीत में तद ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। तीन चीजें हैं जो दुष्ट के पास होती हैं, तीन चीजें, तो उनका वो कैसे दुरुपयोग करता है, और जो साधु के पास तीन चीजें होती हैं तो उनका वो कैसे सदुपयोग कर रहा है करता है, ये बताया गया है। एक तो विद्या, दूसरा धन और तीसरा बल। साधु के पास होता है तो विद्या से वो जो है ज्ञान अर्जन करता है और लोगों को ज्ञान देता है, हैं, और धन उसके पास होता है तो उसका दान करता है, सुपात्र को दान करता है, हैं, और उसके पास शक्ति या बल होता है तो वो रक्षा करता है, निर्बलों की रक्षा करता है। तो विद्या, धन और बल, इन तीन चीजों का उपयोग साधु इस प्रकार से करता है। और जो खल दुष्ट है उसके पास तीन चीजें होती हैं तो उनका वो दुरुपयोग कैसे करता है, विद्या होती है तो विवाद करता है लोगों से, है ना, कुछ भी कहोगे उसको जो है वो हराएगा, लज्जित करेगा और पराजित करेगा, है। और धन मदाय, और धन अगर होगा तो दान नहीं करेगा, उसका घमंड और बढ़ेगा, धनम मदा है, और शक्ति परेशान पर पीड़ना है, और बल होगा तो दूसरों को वो जो है तंग करेगा, अपना बल दिखाएगा, है ना, तंग करेगा। खलस्य साधु विपरीत में दन, तो खल में और साधु में ये सब विपरीत होते हैं। ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय, विद्या ज्ञान देने के लिए होती है उसके पास, और धन दान देने के लिए होता है, और बल रक्षा करने के लिए होता है, है ना। तो यहाँ पर भगवान बल की बात कर रहे हैं कि बल, ऐसा बल जो है मैं हूँ किसी के अंदर, क्योंकि तो ऐसे बल से वो व्यक्ति अपनी स्थिति में हमेशा बना रहेगा, है ना। इसके बाद फिर दूसरी पंक्ति में भगवान क्या कहते हैं, धर्मा विरुद्ध हो भूतेशु कामोस्मी भरतर सभे, धर्म के विरुद्ध, हाँ, तो इसमें प्रभुपाद तात्पर्य लिखते हैं, इसी प्रकार धर्म सम्मत मैथुन संतान उत्पत्ति के लिए होना चाहिए, अन्य कार्यों के लिए नहीं। अतः माता पिता का उत्तरदायित्व तो है कि अपनी संतान को कृष्ण भावना भावित बनाए, है ना। तो ये भी जो है जो काम है धर्म के अविरुद्ध है, तो इससे व्यक्ति की कृष्ण भावना, कृष्ण चेतना में कोई हानि नहीं होती है, उसकी कृष्ण चेतना में कोई बाधा नहीं पड़ती है। संतान उत्पत्ति के लिए अगर जो है सहवास करता है कोई व्यक्ति, तो उसकी कृष्ण चेतना में बाधा नहीं पड़ती। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए सहवास करता है, उसकी कृष्ण चेतना में बाधा पड़ती है, है ना। तो भगवान बता रहे हैं, है ना, ठीक है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, वैसे टाइम तो मतलब ज़्यादा हो चुका है, फिर भी कोई प्रश्न हो या मैं प्रश्न करूँ, मैं प्रश्न करूँ, ठीक है, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। अच्छा देखिए, जो पंच महाभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, इनमें जो है अपने अपने कुछ ऐसे गुण होते हैं जिनके कारण उनकी स्थिति होती है, है ना। तो भगवान ने बताया, तो सबसे पहले भगवान ने जल की बात करी, लेकिन अगर हम ऐसे क्रम से देखें तो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश इस प्रकार का क्रम है। तो पृथ्वी का नाम पहले आता है पंच महाभूत में, तो पृथ्वी में भगवान ने ऐसी कौन सी चीज़ बतलाई है जो उसका मतलब कारण है, जिसके कारण पृथ्वी गंध है, हाँ, और गंध ना रहे तो पृथ्वी नहीं रहेगी, क्या हो जाएगी, जल बन जाएगी, है ना। तो ये जो है, हाँ, ये मैंने बंद कर दिया मोबाइल, आपके पास मोबाइल हो तो बंद कर दीजिए अभी। अच्छा, फिर पृथ्वी के बाद दूसरा नंबर किसका है, जल का, है ना। तो जल में ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण जल, हाँ, जल रहता है, रस, हाँ रस, अगर रस ना रहे तो जल क्या बन जाएगा, अग्नि बन जाएगा। तो भगवान कहते हैं जल में वो रस में हूँ, जिसके कारण जल अपनी स्थिति में रहता है, बना रहता है, पृथ्वी जल, इसके बाद अग्नि, अग्नि में ऐसे कौन सी चीज है, रूप या तेज है ना, जिसके कारण अग्नि अग्नि बना हुआ है, और ना रहे रूप तो हवा बन जाएगा, है ना। तो इसलिए भगवान ने अग्नि में बताया है ना। इसके बाद वायु, तो वायु वायु की बात भगवान ने करी नहीं है, लेकिन वैसे अगर समझना है तो समझ सकते हैं कि वायु में ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण वायु मतलब वायु बना रहता है। स्पर्श, स्पर्श वायु में स्पर्श है, अगर स्पर्श ना हो तो वायु क्या बन जाएगा, आकाश बन जाएगा, है ना। फिर आकाश, आकाश में ऐसा कौन सा गुण है जिस, हाँ शब्द ध्वनि, अगर शब्द ना हो तो आकाश क्या बन जाएगा, महातत्व बन जाएगा। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। जगत गुरु शिला गुरु की जय। इसको रख लो, हरि बोल।
Krishna, 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 Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama.